লোতন জলধরের সহে গোবধূটির কুল চৌরায় প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। সংসার মহিরুহস্য বীজায় অজ্ঞানান সুপ্রদান শিরশর নিকর ব্যাপি ভীর ব্যাপ্য লোকান ভুক্ত্বা ভোগাংশ বিষ্ঠান পুনরপি ধীষণোদ্ভাসিতান কামজন্যান কৃত্বা সর্বান বিশেষান স্বপিতি মধুরভুং মায়া ভোজয়ন্ন মায়া সংখ্যা তুরীয়ম পরমমৃতমজম ব্রহ্ময়তন্নতোস্মি শঙ্করম শঙ্করাচার্যম কেশবম বাদরায়ণম সূত্রভাষ্য কৃতৌ বন্দে ভগবন্তৌ পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরো গুরুরাত্মেতি মূর্তিভেদৌ বিভাগিনী ব্যোমবদ্ব্যাপ্তদেহায় দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তসমৈ শ্রী গুরবে নমঃ। তসমৈ শ্রী গুরবে।
আজ সমাপন হ্যাঁ, হম প্রয়ত্ন কর রে থে কি বতায়ে কি ধর্ম ক্যা হ্যা, অর্থ ক্যা হ্যা, কাম ক্যা হ্যা, আজ হ্যাঁ মোক্ষ ক্যা। এ তো বড়ে বিষয় লম্বে হ্যাঁ, ধর্ম সে তত্ত্বম ভূতম নিহিতম গুহায়াম। ধর্ম কা তত্ত্ব বড়া ছিপা হুয়া হ্যা, বড়া গূঢ় হ্যা, অচ্ছে অচ্ছে লোগো কে সমঝ মে নহীঁ আতা। পর জিতনা হম সমঝ সকতে হ্যাঁ, সবসে সাধারণ বতায়া, সবসে সাধারণ ধর্ম বতায়ে, বহুত বড়িয়া। আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেশাম ন সমাচরে, শুননে মে বড়া আচ্ছা লগতা হ্যায় লেকিন বহুত কঠিন হ্যায়। জো আপকো আচ্ছা না লগে ও দূসরে কে সাথ মত ব্যবহার করো, জো আপকো আচ্ছা না লগে দূসরে কে সাথ ব্যবহার মত করো। শুননে মে কিতনা আচ্ছা লগতা হ্যায় লেকিন জীবন মে পালন করনা কিতনা কঠিন হোগা। এসে ছোটি ছোটি বিধা জো ধর্ম কি হ্যায় না উসকা পালন করো, বড়ি বাত মত সোচো, নহীঁ কর পাওগে। और फल होता है क्रिया के संपादन का, सोचने का नहीं। सोचो अच्छी बात हो तो बुद्धि का काम है, बड़ी अच्छी बात है। दूसरे के लिए अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन जितना करोगे उतने का फल मिलेगा। इसलिए अगर अच्छी बात समझ में आए तो उसको करो। धर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जहां भी मिले, जहां भी अच्छी बात सुनने को मिले जाओ, जहां से भी अच्छी बात मिले ले लो। देखो भंवरा कोई बड़ा फूल छोटा फूल नहीं देखता, छोटे फूल से भी शहद ले लेता है, बड़े फूल से भी शहद ले लेता है। अच्छी बात जहां से भी मिले ले लो। इसलिए थोड़े थोड़े में धर्म का संपादन करते रहो। स्वल्पमप्य से धर्म से त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा धर्म बहुत बड़ी विपत्ति से छुड़ा देता है। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, भगवान का हाथ कट गया, उस पर द्रौपदी ने कपड़ा बांध दिया, छोटा सा कपड़ा बांध दिया, लेकिन उसको कितनी बड़ी विपत्ति से बचाया। अनजाने में अजामिल ने फेंक दिया, माला फेंक दिया, तो दियम वस्तु गोविंदम, सुन रखा था भगवान है, फेंक दिया भगवान के नाम से, है ना। उसका परिणाम क्या हुआ, स्वर्ग मिल गया। स्वर्ग में भी ऋषि मिल गए उसको सही राय देने वाले। उसको मालूम था कि हम बहुत देर तक नहीं रह सकते। ऋषि से पूछा क्या करना चाहिए, बोले सब दान कर दो, क्योंकि कल तो तुम्हारा रहेगा नहीं, लेकिन आज जो तुम दान कर दोगे उसका अनंत फल मिल जाएगा। बुला के सब ऋषियों का स्वागत किया और दान दिया, ले जाओ जो तुमको जो चाहिए ले जाओ। ऋषि लोग भी बड़े खुश हो गए, वाह क्या दानी है, उसको क्या पता ये कौन है। अनंत ऐश्वर्य शक्ति संपन्न वो बलि हुआ है जिसकी चौकीदारी भगवान करने लगे, भगवान को भी देने वाला बलि। राजा बलि के नाम आपने सुना, लेकिन उसकी पूर्व कहानी कैसी है। इसलिए ये मत सोचो कि बहुत होगा तो करेंगे, नहीं अपने लिए भी करो, कंजूस मत हो अपने लिए। एके जात महनो जनाहा, माता पिता के लिए सोचो, पत्नी के लिए सोचो, बच्चों के लिए सोचो, परिवार के लिए सोचो। सच तो यह है कि पहले अपने लिए सोचो, अपने लिए ये सोचो कि मरने के बाद तुम्हारे साथ जाएगा क्या, वो भी करो। इनका किया हुआ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, इस बात को झुठला नहीं सकते हो, और इससे आत्मा बलवान होती। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। कोई कहे कि ये अपराध है, ऐसा नहीं। और आप अपना उद्धार कर सकते हैं, आपका उद्धार कोई दूसरा नहीं कर सकता है, कोई नहीं उद्धार करेगा, बस मरने की देर है। अगर बहुत पैसा है तो बोलेंगे जितना जल्दी हो सके ले जाओ इनको, और क्यों क्यों भाई जल्दी क्यों, आके बंटवारा जो करना है। चलो श्री राम, भरसक तो उसी समय ही शुरू हो जाते हैं, फूकेंगे बाद में, वही हिसाब किताब पर पूरा कर देते हैं। और मोह ने अंधा कर दिया, मोहांधो नहीं वो पश्यति। इसलिए मोह में अंधे मत हो, मोह का काम ही उल्टा दिखा देना, जो नहीं है वो अपना है। हाँ लेके आए सबको, हम लोगों के पास सब दुखी आते हैं, सुखी तो कोई आता ही नहीं। बस सुखी उतने लोग हैं जितने यहां आ गए। चौर श्री राम, बस यहां आ गए अब सुखी हो गए। और उनका दुख मोह का, लोभ का, अहंकार का, अपने पद का, अनुरोध का, बस यही दुख है। वो मन से दुखी है, शरीर से तो बहुत बढ़िया देखने में हा? लेकिन अगर आदमी मन से दुखी है तो कितना भी सुंदर क्यों न हो बड़ा क्रूर दिखलाई पड़ता है। चिंताग्रस्त हो उसकी सारी कांति क्षीण हो जाती, उसका स्वरूप समाप्त हो जाता है। इसलिए मन की प्रसन्नता होनी चाहिए, मन में संतोष ही नहीं, व्यग्रता है, इसलिए कि धर्म का संपादन नहीं करते। तो धर्म हमारे मन को शांत करता है, इसलिए धर्म का संपादन करते हैं, मोह छोड़ देना चाहिए। विवेक करो, जब धर्म की बात आवे तो विवेक को साथ रखो, नहीं करना है अभी, कल का क्या पता। दान करने की बात आवे अभी कर दो, 5 मिनट के अंदर मन बदल जाएगा, है ना। 5 मिनट नहीं लगता, मोह बड़ा तगड़ा है, लोभ बड़ा तगड़ा है। जैसे मैंने कल कहा ना कि लगता है ये तो जाएंगे नहीं, इन्हीं के साथ रहना होगा, मोह के साथ, लोभ के साथ, काम के साथ, क्रोध के साथ, अभिमान के साथ, ये कहाँ जाएंगे, ये तो परिवार के लोग हो गए जैसे। ऐसा नहीं है, धर्म में प्रकाश है, और ये अंधकार में होते हैं, ये ज्ञान से होते हैं। जितना ज्यादा अज्ञान उतने ज्यादा अहंकार, जितने ज्यादा अज्ञान उतने ज्यादा लोभ, उतने ज्यादा मोह। धर्म हमें वैराग्य की तरफ ले जाता है, और वैराग्य हमें शक्तिशाली बता, अरे सब छूट जाएगा क्या फर्क पड़ता है, चलो देना चाहो देते जाओ, मिलेगा ना देते जाओ, देने से मिलता। अच्छी बात कहो, अच्छा बोलो, दो। धर्म कहता है दूसरे को देना चाहिए, क्या देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। देते हो, पैसा मत दो, कपड़ा मत दो, जमीन मत दो, भोजन मत दो, जिससे तुम पवित्र होते हो, निराभिमानी होने की कोई दवा नहीं है। चार नंबर पांच नंबर मिलेगी, दूध नाके पे मिलेगी, 25 सेक्शन में मिलेगी, कहीं मिलेगी? कहीं कोई दवा आपने सुनी है कि खा ले हम निराभिमानी हो जाए? हैं? जब तक निराभिमानी नहीं हो गए, अभिमान जब तक है तब तक मुक्ति नहीं, अभिमान ही बांधता है। जहां अभिमान कम हो वहां जरूर जाओ। जितने देर तक अभिमान निराभिमानी बने रहोगे उतने देर तक आनंद का अनुभव करोगे। आनंद वस्तु में नहीं है, व्यक्ति में नहीं है, स्थान में नहीं है, जलवायु में नहीं, यहां तक कि आनंद तो तुमको अपने शरीर में भी नहीं है। आनंद तो अपना आपका अपना स्वरूप है। आनंदात एव खलु इमानि जायन्ते, आनंद से आपकी उत्पत्ति है। चलो आनंद से उत्पत्ति नहीं तो ईश्वर की सारी सृष्टि है, तो ईश्वर में कहां दुख है? ईश्वर को दुखी देखा आपने? रोते हुए देखा? अभावग्रस्त देखा आपने? जब सारी सृष्टि ईश्वर की बनी हुई है, ईशा वाश विदम सर्वम, श्रुति भी कहती है ये जो कुछ भी है सब ईशा ईश्वर से ही है। इदम सर्वम, जो कुछ भी दिखलाई पड़ रहा सब ईश्वर ही है, ईश्वर अतिरिक्त नहीं है। नाम रूप सब झूठे। सुनार के पास जाओ तो वो केवल सोना देखता है, वो अंगूठी नहीं देखता, हार नहीं देखता, पायल नहीं देखता, चेन नहीं देखता। क्या देखता है वो? सुनार के पास ले जाओ बेचने के लिए गहना, तो क्या करेगा? सोना देखेगा ना, उसकी दृष्टि में सोना है। क्यों सुनार की दृष्टि कर लो भाई, सुनार की दृष्टि कर लेंगे तब भी आप देखेंगे कि सब कुछ ईश्वर करता ही, तो फिर तुम्हारा है ही नहीं, काय करो ना, सब ईश्वर का है। ये जो आपने अपनी सृष्टि बना ली ना, यही दुखदाई है। ईश्वर की सृष्टि दुख नहीं देती है। ये मैं मेरा जो है यही दुख देता है। ये मेरा है तो मेरा कहना नहीं मानता, ये मेरा है तो मेरे अनुसार नहीं चलता, ये मेरा है तो कोई हाथ ना लगावे, मर जाए तो उठा ले जाओ लेकिन अभी ईंटे को हाथ मत लगाओ। क्या बात है। मुझे याद है बहुत दिनों की बात है, हम शायद विदेश जा रहे थे, तो रात को बहुत देर तक महाराज जी के साथ रहे, सेवा वा करते रहे। 12-1 बज गया, फिर सो गए। अब 12-1 बजे की उड़ान थी शायद, अब जल्दी जल्दी सब नहा धो के सब तैयारी कर रहे थे कि ये कपड़ा रखने। एक महात्मा आए, बोले बड़ी जल्दी जल्दी में तैयारी कर रहे हैं। हमने कहा तुम भी सीख लो, जाने की तैयारी ऐसे ही होनी चाहिए, जाने की तैयारी ऐसे ही होनी चाहिए, तुम भी सीख लो। ओ महात्मा आके बाहर बैठ गया, मैंने तैयार के लिए 15-20 मिनट में रख लिया सामान किताब रख। बोले तैयार हो गए? हमने हाँ चलो। जब तुम्हें ये निश्चित है कि जाना है तो जाने वाली तैयारी है तुम्हारे पास? बोलो वो तैयारी है? वहां से नोटिस नहीं आएगी, इनकम टैक्स सेल टैक्स सबकी नोटिस आती है, उधर से नोटिस नहीं आएगी ना, इसलिए तैयार रहो। ये जो तैयारी है इसी का नाम मुक्ति है। मुक्ति कोई चीज नहीं है, जो आपने अपने आप को बांध रखा है ना छोड़ दो, स्वयं ही बांधा है, किसी ने आपको नहीं बांधा है। जब विवेक आप करेंगे तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा, जब आप अच्छी तरीके विचार करेंगे तो वैराग्य हो जाएगा। वो वैराग्य जो देख करके होता है बहुत देर तक नहीं टिकता। मसान में जाते हैं ना, अरे अपने राम नाम सत्य, किसी को देखते हैं तो करंट लगता है ना, कोई जा रहा हो मर के, नहीं मर के जाता है ना, हाँ भाई मर के जाता है कि नहीं? अच्छा आपने देखा जाते हुए उसको, इसीलिए मैंने 2 बार कहा मर के जाता है तो जाते हुए देखा आपने उसको? नहीं नहीं जाता है, पर मर जाने के बाद जब जाता है तो आप नहीं देखते हो, वो आपको देखता है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म को देखने की प्रक्रिया आपके पास नहीं है, जिसको सूक्ष्म को देखने की प्रक्रिया है वो देख लेता है। तब जाता है और आप रास्ते में देखो किसी को, अरे तो अंतिम यात्रा, रुक जाता है आदमी, है ना? आदमी नहीं रुकता, उसका मन रुक जाता है। अरे उसको याद आता है, अरे हमारी भी तो यही हालत होगी, नहीं किसी दिन हमें भी लोग कहेंगे राम नाम क्या बात। और कितनी मस्ती से सोया रहता है उन्हें, लोग कंधे पर ले जाते हैं और भजन गाते हुए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम है ना। कितना निराभिमानी है कि तुम जला देते हो उफ नहीं करता। कितना वैराग्यवान है कि उसकी इतनी प्यारी शरीर को जिस पर चींटी चढ़ जाए तो आदमी विकल हो उठता है, उसको जला देते हैं लोग लेकिन कुछ नहीं बोलता। निराभिमानी, मर जाने के बाद भी लोग कंधे पर उठा लेते हैं, मालूम है अब हो गया, और जीते जी हो जाए तो शनो मित्र हो तो अपने से मित्रता कर लो। धर्म कहता है सबसे पहले अपने आप से मित्रता करो, आप तो अपने आप के शत्रु बने बैठे हो। आपकी मित्रता तो शत्रुओं से है, आप अपने शत्रुओं को मित्र समझते हैं। भाष्यकार के शत्रु भाषण देने की इंद्रियां हैं, क्या कुछ नियम बना लेना चाहिए, मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम बनाइए। जब तक मन अनियंत्रित रहेगा मुक्ति की तो बात छोड़ दो, यहां भी सुख नहीं भोग सकते। सुख भोगने के लिए भी मन का नियंत्रण होना जरूरी है, बलवान मन चाहिए सुख भोगने के लिए, शांत मन चाहिए, प्रसन्न मन चाहिए, तब यहां का सुख भोग सकते। गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम का विवेक अलग है, वैराग्य अलग है, तप अलग है, जप अलग है, महात्माओं का अलग। आपको त्याग करना चाहिए, हम क्या त्याग करें, चाहो श्री राम। एक ने कहा स्वामी जी आप बड़े त्यागी हैं, हमने कहा हमारे पास कल एक अंधा आया था, बोला महाराज आप हमको बताएंगे अपनी जवानी सूरज कैसे चमकता है, अब क्या बताऊं। बोला क्या मतलब, आपका दृष्टांत सही नहीं है, वेदांत थोड़ा पढ़ा था। हमने कहा नहीं बिल्कुल सटीक है, तुम मुझे त्यागी कहते हो तो हमारे पास है क्या, त्यागी तो वो जो रहते हुए त्याग है, त्यागी वो जिसके ऊपर उस वस्तु का प्रभाव न हो, वस्तु के उपयोगिता शक्ति से जो प्रभावित न हो वो त्यागी। त्यागी समझते हैं ना, त्यागी का वो मतलब नहीं कि है ही नहीं, खाने को नहीं मिला बोले एकादशी, चलो श्री राम। खाने को नहीं मिला जिस दिन बोले आज एकादशी है, वो एकादशी होती है क्या। त्याग का मतलब है कि है हमारे पास, ऐसा नहीं है, है पर धर्म के लिए उसके प्रति कोई ममता नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, धर्म प्रधान है। आत्मा की प्राप्ति होती हो, आत्मा का सुख मिलता हो तो लिखा कि सबको छोड़ देना चाहिए, आत्मार्थम सर्वम सर्वम त्यजेत, छोड़ देना चाहिए, जैसे लिखा है शतम विहाय भोक्तव्यम, खाने का समय हो तो सौ काम हो तो भी उसको छोड़ देना चाहिए। अरे सारा काम खाने के लिए तो होता है, पर काम की इतनी प्रधानता होती है कि डब्बा दुकान पर रहता है खा नहीं पाता आदमी, घर आके खाता, क्यों खाना नहीं खाया, नहीं आज बहुत काम था इसलिए खाना नहीं खाया, तेरा भला हो। इसलिए आत्मर्थ जो काम है, जो शांति के लिए, जो आपको अपनी पहचान कराता है, जो आपको अनंत सुख देता है, जो हमेशा आपको आनंदित रखता है, उसके लिए प्रयत्न करना आपका पहला धर्म है। बस उस रास्ते नहीं चल सकते आप जिस रास्ते हम चल सकते हैं, हम उस रास्ते नहीं चल सकते जिस रास्ते आप चल सकते हैं। मोक्ष आपको भी चाहिए, मोक्ष हमें भी चाहिए, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही है। मोक्ष का मतलब अपने आप को जानना, बस मोक्ष माने छुटकारा, किससे, ये जो आपने बंधन बना रखे हैं, क्या धीरे 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 करो, एकदम मुक्ति नहीं मिल जाएगी। पहले वस्तु के स्वरूप को समझें कि क्या है ये, ये हमेशा दिमाग में रखें आप, कि धर्म ही साथ जाएगा, इसलिए धर्म में व्यवहार होना चाहिए। बोलते समय धर्म की बात सोचें, अप्रिय मत बोलो, कुछ तो नियंत्रण करो, अप्रिय मत बोलो, प्रिय बोलो, नहीं तो चुप रहो। कोशिश करो कि किसी दूसरे का भला हो जाए, अनबल मत करो, ये इतना साधारण नहीं है। क्या प्रदानम प्रछन्नम, अगर दो तो किसी को नहीं मालूम होना चाहिए, अगर दो तो प्रकृष्ट दान उत्तम, उत्तम दान क्या है प्रदानम, प्रकृष्ट दान क्या है प्रछन्नम, मालूम नहीं होना चाहिए। भर सकते ऐसा है कि जेब से निकाल के देखो भी मत कि क्या है, 10 की है कि 20 की है कि 100 की है, मन बड़ा अपसंस्कारी है, और उसका स्मरण नहीं होना चाहिए। प्रछन्न का अर्थ यही बताया कि उसका स्मरण नहीं होना चाहिए, दे दिया ठीक है चलो हो गया। और अगर घर पर कोई आ जाए तो पूरा सम्मान दो, तुम देखो तुम्हारा मन सम्मान दे सकता है कि नहीं, इतना जल्दी नहीं है, है ना। बहुत लोग तुम लोग तो शिकायतें करने आते हो कि नहीं, पति पत्नी दोनों शिकायत करते हैं। एक ने कहा स्वामी जी हमारे रिश्तेदार आते हैं तो घर वाली जो है बर्तन पटकने लग जाती, कुछ कुछ बोले कि ये नहीं है वो नहीं है, देखो कुछ लोग हंस रहे हैं उनको मजा आ रहा है, जय श्री राम। और किसी की पत्नी ने भी यही बात कहा कि जब हमारे घर के लोग आते हैं, पीहर के लोग आते हैं, तो हमारे श्रीमान जी घर ही छोड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं खिलाओ पिलाओ, हम इनका मुंह नहीं देखना चाहते लो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपके लिए नहीं है, गृहस्थ आश्रम में ऐसा नहीं है। गृहम उपगते संभ्रम विधि, उनका सम्यक आदर करो। यहां तक के लिखा है कि अगर शत्रु भी आ जाए तो उसका पूरा सम्मान करना चाहिए, वो छोड़ दो कि वो शत्रु है, जाने के बाद घर पर आ जाओ, बड़े प्यार से उसके खड़े हो जाओ, प्यार से उसके साथ बैठो, बातचीत करो। न करना गरीब है और करना धनी के लक्षण है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ हिपाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। अरे ये तो धनवानों के लक्षण है, अच्छे लोगों के लक्षण यही है कि अच्छी भाषा में बात करते हैं, भाषा से पता चल जाता है। जलम अन्नम सुभाषितम, कोई भी आ जाए उसको जल दो, मध्यान काल है बढ़िया बैठा के अपने साथ खिलाओ, जो भी तुम्हारे पास है, विविध प्रकार के भोजन का उतना मूल्य नहीं जितना कि कितने स्नेह और सम्मान और आत्मीयता से आप दे रहे हैं। तो बहुत अच्छे महात्मा थे, पढ़ाते थे हम लोगों को, तो सुबह के टाइम हम कहीं गए हुए थे कुछ, मेरा ख्याल उत्तरकाशी की बात है, तो वहां से सीरा और पूरी सुबह सुबह महात्मा आए थे तो बांटते थे महात्माओं को, है ना। तो जब पाठ खत्म हो गया तो हम अपना गए और थोड़ा दूर लेके आ गए, वहां हम बैठे तो अकेले में बैठ करके खा रहे थे, है ना। तो जो महात्मा हम लोग को पढ़ाते थे, बड़े अच्छे महात्मा थे, बड़े विद्वान वृद्ध थे और बात बहुत कम करते थे, किसी से जल्दी बातें नहीं करते थे। इतने में वो आ गए स्वामी जी, वो आ गए, मैंने देखा नहीं, उनको पीछे से आए और हमारे बगल में बैठ करके, तो दो मालपुआ था सीधा था, तो एक उसमें से निकाल लिया उन्होंने और फिर उस पर सीरा रख के अपने हाथ से ही खाने लगे। अब आप बताओ इस आत्मीयता का जो सुख है उसको कैसे तौल सकते हो, है? इसको तौला जा सकता है, खरीदा जा सकता है? वहां उस मामूली से सीरा और एक छोटे से मालपुआ के टुकड़े का मूल्य नहीं है, उसको लेकर के उन्होंने कितनी बड़ी चीज दे दी। तो आपका स्नेह होना चाहिए, आपकी सहृदयता होनी चाहिए, आपका प्यार होना चाहिए कि उसके आने से आपकी आंखों में प्रसन्नता हो, शब्दों में प्रसन्नता हो, आपके उठ के खड़े होने में प्रसन्नता हो, उसको लगे कि उसके आने से आप प्रसन्न हुए। भोजन इतना बहुत बढ़िया नहीं है तो सूखी रोटी भी आपके साथ प्रसन्न होकर खा लेगा, गला मन्नम सुभाषितम, और कहा हमने सुभाषित बोलना चाहिए, बढ़िया वाणी में सुवास होना चाहिए, दुर्गंध नहीं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे लगता है कि जल रहे हैं बेचारे, उनके शब्दों में भी इतनी गर्मी होती है कि लगता है कि दूसरे के कान में पड़ेगा तो कान ही जल जाएगा। सुभाषितम मतलब अच्छी वाणी में बात करना चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए, वाणी में अपनापन होना चाहिए, निश्चलता होनी चाहिए, निरभिमानता होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, ये वाणी से छलकना चाहिए। और मूढ़ ही पाषाण खंडे सूरत संज्ञा बीते, ये मूर्ख लोग बोलते हैं हीरा है, पन्ना है, रूबी है, इसकी कोई कीमत कहाँ है, ये हीरे के तरीके है। इसलिए कोई भी अपने पास आए, जब तक तुम निराभिमानी नहीं बनोगे, जब तक तुम्हारे मन में वैराग्य नहीं होगा, जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, तब तक इन चीजों को आप पालन नहीं कर सकते। शत्रु आया तो देख के दिमाग फिर गया, अरे ये क्यों आया, 20 बात कर, अरे आया तुम्हारे घर पर, उसका सम्मान करो। अतिथि आगमने अनध्याय, ऋषि ने कहा कि कोई भी आ जाए अपने पास तो उठ के खड़े हो जाओ, उसका स्वागत करो, नहीं तो तुम्हारा सारा धर्म लेके चला जाएगा। एक तो वैसे ही बहुत धर्म करते हो, है ना, आपके पास तो बहुत पहाड़ जितना धर्म है ना, कोई थोड़ा सा ले भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं चाहो श्री रा। अधर्म जानबूझ के करते हो, धर्म तो गलती से हो जाए चलो कोई बात नहीं, तो डर के मारे धर्म कर लेते हैं, डर के मारे पूजा कर लेते हैं, डर के मारे मंदिर में चले जाते हैं, डर के मारे सत्संग में चले जाते हैं, डर के मारे संत के पास चले जाते, डर के मारे अगर कुछ हो गया तो चलो इधर भी कर लेते हैं ना, हृदय से होना चाहिए। अब ऐसा करने के लिए आपका मन तैयार है कि नहीं वो सोचो आप। इतना जल्दी मन आपका नहीं मान जाएगा कि सबके लिए इतनी बातें आप कर सकें, जब तक आप निराभिमानी नहीं बनेंगे, जब तक आपका मन शांत नहीं है, पवित्र नहीं है, जब तक आपके मन में स्वार्थ बुद्धि है, अपने पराये का भेद है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, मोह है, लोभ है, मान अपमान का भाव है, तब तक श्रद्धा नहीं फल पुष्पित होती है। और अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तत्वम तयत्कृतम, सब बेकार जाता है अश्रद्धा से करो तो। श्रद्धा बढ़ोती तभी होती है, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठे मुक्ति मिल जाए, बंधन से मुक्ति है, बंधन से। ये सरल मार्ग बता रहे, सर्व मप्य से धर्म से, मैंने पहले कहा कि सब थोड़ा थोड़ा करो, ज्यादा नहीं, जब अभ्यास होता जाए तो बढ़ते जाओ ना, एक ही दिन में पहलवान नहीं हो जाओगे। ये मत सोचो कि अभी मुक्त हो ना, अरे मुक्त तुम हो ही, जो तुम्हारे बंधन है इसको छुड़ाने में जितना देर लगे मुक्त तो तुम है हो। आत्मा में कभी बंधन हुआ ही नहीं, आत्मा को कोई बांध ही नहीं सकता, घटमठ जो बना दिया है ना इसी को फोड़ना है बस, आकाश तो कभी बंधन में हुआ ही नहीं। इसलिए कोई अपने पास आ जाए तो खूब स्वागत करना चाहिए ना। हाँ, और प्रियम कृत्वा मौनम, उपकार करके चुप हो जाना चाहिए। अगर वो गाली भी देता है तो सहलो, अभी लोग उपकार करके तो लाउड स्पीकर पर बताते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने स्कूल बनवा दिया, कुआं खोद दिया, ऐसा कर दिया, सब बेकार गया। धर्म क्षरत कीर्तिनाथ, कुछ अच्छा करके कभी भी मत कहो किसी से, किसी का उपकार कर दिया बिल्कुल कभी मत कहो। अब अच्छा है कि वो खुद भी ना जाने, जिसका उपकार आपने किया वो ना जाने तो और भी अच्छा है, कर दिया बात खत्म हो गई है ना। प्रियम कृत्वा मौनम, लेकिन नहीं, वो दूसरा कहे उसके पहले ही जाके कह दोगे तुम, देखो तो तुम्हारे लिए मैंने ये किया। और अगर कहीं कुछ उससे बेचारे से त्रुटि हो गई तो उसके घर उलाहना देने जाएंगे, तुम्हारे लिए मैंने ये किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, ओ तेरा बड़ा है। तो प्रियम कृत्वा मौनम, ये तब होगा जब आपके जीवन में साधना होगी, जब आप धर्म को समझेंगे, जब आप समझेंगे कि मौन रहना ही धर्म है, इससे शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, प्रसन्नता होती है। उस मौन का प्रयोग आप इस तरीके करो, अपने लिए करो, कह के उसका अपलाप मत करो, न करो ठीक है, लेकिन अगर करो तो किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, चुप रहो, है ना। और किसी को उपकृत कर दिया तो समाज में भी नहीं कहना चाहिए। अंशे को लक्ष्मिया, लक्ष्मी की एक बहुत खराब बात, उससे कहते ऊपर उफान को, अंशे को लक्ष्मिया। देखो जब दूध में उफान आता है तो क्या होता है, बर्तन से गिर जाता है, और बर्तन से गिर के क्या होता है, आग में जल जाता है। इसमें लक्ष्मी जब आती है तो अभिमान साथ साथ आता है, और वही अभिमान लक्ष्मी को जला देता है, और वही लक्ष्मी मनुष्य को जला देती है। रहते हुए भी जलता रहता, भयातुर रहता, भयाक्रांत रहता, ये ले लेगा, ये ले लेगा, उसका विश्वास ही किसी के ऊपर नहीं होता। अनुत से कहो, इसलिए लक्ष्मी का अभिमान नहीं करना चाहिए, वहां ये बताया, अभिमान ही नहीं करना चाहिए। वो मान ले प्रारब्ध से है, चलो इसका सही सदुपयोग करना। देखिए धर्म के लिए मोक्ष के लिए प्रारब्ध नहीं है, धर्म के लिए मोक्ष के लिए तो तुम प्रारब्ध को छोड़ देते हो, प्रारब्ध पर छोड़ देते हो। अरे भगवान की इच्छा होगी तो चलेंगे गंगा सागर, और अगर ग्राहक मिल जाए तो घर आके फिर चले जाएंगे बंबई। बंबई चार चक्कर मारने के लिए तो ठीक है, उसके लिए तुम्हारा प्रारब्ध सामने नहीं आता, जो कि केवल प्रारब्ध से मिलने वाला। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में बेचो, ये पांच चीजें जो है प्रारब्धाधीन है, चाहे जितना तुम करो मिलेगा उतना जो तुम्हारे प्रारब्ध में है। लेकिन धर्म का संपादन आपको करना पड़ेगा, जप आपको करना पड़ेगा, तप आपको करना पड़ेगा, दान आपको करना पड़ेगा, आत्मचिंतन आपको करना पड़ेगा। ये प्रारब्ध से नहीं होगा, करते हुए भी सफलता नहीं मिलती, करना ऐसा मान लो हरि कृपा है। अगर सफलता नहीं मिलती है तो समझ लो हरि इच्छा। ईश्वरवादी पुरुषार्थ करता है, सफलता मिलती है तो कहता है हरि कृपा है, है ना। कृपा तो ईश्वर करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, एक बार भ्रम भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि भ्रम नहीं हो जाता। जब मन है तो भ्रम भी होगा, बुद्धि है तो उसमें संशय भी होगा। ये कोई चिंता का विषय नहीं कि भ्रम नहीं होगा और बुद्धि में संशय नहीं होगा। ओहो होता नहीं हुआ, नारद जी को भ्रम हो गया कि वाह वाह हम कामारी हो गए, दो हो गए, एक शंकर जी एक मैं, मैंने इंद्रियों को जीत लिया है, सीधा चले गए भगवान के पास। आप लोगों ने कहानी सुनी ना, भगवान ने देखा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमारा भक्त आनंद लेना चाहिए, वृद्धियां सिद्धियां आती है ना, जब उनका वो प्रवाह करने लग जाता है तो मारा जाता है। एक तो वृद्धियों सिद्धियों के लिए प्रयत्न किया जाता है, एक तो सहजावस्था से भी इंद्रिय वृद्धियां सिद्धियां मिल जाती है, लेकिन उनके चक्कर में वो नहीं जाता है, भ्रम हो गया। भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने देखा कि इसका तो निराकरण कर देना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे नारद जी चले तो भगवान ने उपाय कर दी कृपा, नारद के ऊपर भगवान ने कृपा की, क्योंकि नारद भगवान के अनन्य भक्त हैं। तुरंत रचना रच दी, नहीं वहां शहर तैयार हो गया, राजा तैयार हो गया, कन्या तैयार हो गई, उसका स्वयंवर होने लगा। हो नारद जी वहां पहुंच गए, देख लिए, अभी देरी नहीं हुई है, अभी भगवान को कह के आ रहे हैं कि हम जितेंद्रिय हो गए। धर्म शर्त कीर्तिनाथ, याद रखिए, इसलिए जो आपने पाया वो मत बताओ किसी से, बताए नहीं कि उसका जो अभिमान है वो तो आपके सिर चढ़ बैठेगा। जब नारद जी जैसे लोगों की ये हालत हो सकती है तो आपकी, आप तो कह धर्म है, तो आप लोग तो बिल्कुल धर्म स्वरूप ही है। जय श्री राम, है ना। नारद जी तो धोखा खा गए, आप थोड़ा धोखा खाएंगे। उसने देखा, उसके पिता ने महाराज लड़की का हाथ देखो, देखा ऐसा है वैसा, उसका हाथ देखने लगे विश्व मोहिनी का, तो उसके हाथ में तो लिखा था कि इसके जितने लक्षण थे वो तो भगवान के थे, कि इसका वर जो है वो भगवान ही होंगे। तो जो अपने मतलब की थी वो बताने लगे, और जो बाकी था वो छिपाने लगे। फिर लौट के आए, एक बहुत उसमें बड़ी अच्छी बात है, वो शायद आप लोगों ने मार्क किया हो, नहीं तो आज ध्यान देना जरा। भगवान के पास गए, उन्होंने सोचा कि पता नहीं इस शकल से वो वर्क करे न करे, विश्वमोहिनी है, अद्वितीय है, तो कोई अद्वितीय शकल सूरत अगर मिल जाए हैं तो काम बन जाएगा। अब वो भूल ही गए बेचारे, है ना। ओहो, भगवान के पास गए महाराज, अरे बड़ा जल्दी आ गए, वाह वाह क्या बात है। कहो देवता उठ के खड़े हो गए, आइए आइए ऋषि बैठो। बोले नहीं महाराज, आज हम कुछ मांगने आए, भगवान से कह रहे हैं मांगने आए। हाँ हाँ, अरे तुमको मांगने की क्या जरूरत है, बोलो क्या चाहिए। तो बोले महाराज आपका स्वरूप चाहिए। अरे लोग पैसा मांगते, धन मांगते, मकान मांगते, धंधे का स्वरूप मांगते, कपड़ा लता जेवर, वो कहते हैं आपका स्वरूप चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, देते हैं स्वरूप, लेकिन स्वरूप करोगे क्या मेरा, फिर तुम्हारा स्वरूप कहाँ जाएगा, तुम मेरा स्वरूप ले लोगे तो तुम्हारा स्वरूप कहाँ जाएगा। बोले नहीं, अभी हम कन्या एक देख के आए, उसे शादी करनी। ओहो, भगवान का स्वरूप पा करके लोग माया छोड़ते हैं। नारद जी भगवान का स्वरूप मांग रहे हैं माया के लिए। जय श्री राम। आप सोचो जरा, भगवान का स्वरूप मांग रहे हैं काहे के लिए, माया के लिए। और माया तो नाशवान है, माया जो हो ही ना दिखलाई पड़े। माया का मतलब है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, सोलह आना नहीं है, 1% भी नहीं। यहां तुम्हारा कौन है बताओ, हमको किससे पूछ के आए, और जाओगे तो किसको पता बता के जाओगे। कभी सोचा, जितने मरने वाले हैं, जितने लोग बैठे हैं, सबके घर में कोई ना कोई मरा होगा, किसी का पता है किसी के पास है। अच्छा, जितने बच्चे पैदा हुए हैं, किसी का पता है कहां से आए, न शुरू का पता है और न अंत का पता है। यही विचार करोगे यही है मुक्ति, इससे ज्यादा मुक्ति नहीं है, मुक्त हो जाओगे, ये राग के बंधन से मुक्त हो जाओगे। और नहीं तो नारद के तरीके भगवान का स्वरूप लेकर के भी क्या मांगोगे। भगवान ने कहा बिल्कुल, जो तुम्हारा जिसमें तुम्हारा हित होगा हम वही करेंगे, भगवान की कृपा है। भगवान कहते हैं जिससे तुम्हारा हित नहीं, परम हित हो, जासु परम हित हो, हम तुम्हारा वो काम करते हैं जिससे तुम्हारा परम हित हो। और बंदर का मुंह दे दिया, मालूम है ना वो सब कहानी, है ना, वहां से आकर के भगवान को ही श्राप दे दिया। हा, ऋषि से ही श्राप दिलवा दिया, लौट के आ गए। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, इसमें केवल विवेक का ईंधन ही जलता है, विवेक रहता ही नहीं आदमी के पास, किसको क्या कह रहा है कुछ समझ में। जब नारद जैसा आदमी भगवान को श्राप दे सकता है, उलाहना दे सकता है, तो हमारी आपकी क्या बात है। इसलिए इससे बचने के लिए हमेशा धर्म का संपादन करना चाहिए, धर्म को पकड़ के रखो। भगवान ने कृपा कर दी, यह है भगवान की कृपा। उन्होंने उनको सही उनका रूप दिखा दिया कि देखो तुम्हारा ये रूप है, काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या के बसी हो करके रहोगे तो भी तुम हमारा स्वरूप पा करके भी नहीं पहचान पाओगे, तुम इतने अच्छे नहीं बन सकते हो, तुम्हें अच्छे बनने की जरूरत नहीं, जो बने वो छोड़ दो, तुम्हारा तो स्वयं स्वरूप बहुत अच्छा है, दिव्य हो तुम, आनंदमय अभ्यासात, आत्मा का तो स्वरूप ही आनंद है, आनंदमय हो आप। मैट का मैट प्रत्यय का अर्थ ही होता भरे हुए, वो आनंद से भरे हुए, आनंद ही ढूंढते हो, सुख नहीं, वो ईश्वर नहीं देगा, वो आप में ही है, वो थोड़ा थोड़ा साधन करना चाहिए, वो कहीं से ले आना नहीं, कोई देगा नहीं, थोड़ा सा बता देंगे किसी, जब साधन संपन्न हो जाओगे तो महापुरुष बता देंगे ये तुम हो, बस इतनी सी बात। तुम अपने से नहीं जान सकते हो, ये मत भूल करना कि तुम आत्मज्ञ हो जाओगे, कई नहीं कितने कल्प तक ऐसे बैठे रहो का आत्मज्ञ नहीं हो सकते। हाँ, रिद्धि सिद्धि आ सकती है, सिद्धेश्वर हो सकते हो, वरदान प्राप्त कर सकते हो, नाना प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां तुमको मिल सकती हैं, लेकिन तुम आत्मज्ञ नहीं हो सकते हो। आत्मा के आनंद का अनुभव तो तभी होगा जब महापुरुषों के पास जाओगे, वो तुम्हें बताएंगे तब। आंख होते हुए भी सारी दुनिया तुम देख सकते हो, अपने आप को नहीं देख सकते हो। इन्हीं आंखों से सारी दुनिया देख सकते हो, दूसरे को सुधार सकते हो, बना सकते हो, रास्ता दिखा सकते हो, लेकिन तुम्हारा अपना चेहरा कैसा है वो नहीं देख सकते हो। उसके लिए तो दर्पण की जरूरत है, और गुरु होता है दर्पण। गुरु ही एक ऐसा है जो दर्पण के जरिए उसमें हम देख करके अपने आप को सुधार लेते हैं, अपने दाग को मिटा लेते हैं, अपने को सुंदर बना लेते हैं, और फिर भी दर्प नहीं होता है। एक ही जगह है कि जहां हम अपने अभिमान को गला सकते हैं, राग को, मोह को, ईर्ष्या को, काम को, क्रोध को, सबको गला देते, गल जाता है। वहां जाकर के हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तर्विधि परिपाते न परिप्रश्न न सही भया उपदे क्षंत ज्ञानम, वहां परिपात हो जाते हैं। इनकी दवा ये सब मरद है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या, ये सब दवा। इनकी दवा कहां? महताम सेवा। गृहस्थ आश्रम में लिखा है कि महताम सेवा, महापुरुषों की सेवा करो, गालियां खाओ, डंडे खाओ, वहां ये खाते हुए भी मजा आवे तो मजा है ना। महापुरुष सुधारते हैं, ऐसे नहीं सुधारते। तुमको माला पहना के नहीं सुधारेंगे, माला पहनाए तो समझ लो कि कहा उन्होंने जाओ श्री राम। हाँ नहीं, वहां नहीं, वहां तो जो भी सुनो उसमें मजा आवे तब समझ लो कि कुछ पा रहे हो। और जब तुम्हारा जितने अभिमान गलेगा उतने तुम्हें मजा आएगा, जितने निर्भिमानी होते जाओगे उतने जीवन मजेदार बनता जाएगा। और उसका सरल रास्ता यही है, किसी महापुरुष के पास जाके जाओ। उन्होंने जो बता दिया रास्ता, थोड़ा सा ही रास्ता, उसी रास्ते से तुम पहुंच जाओगे। वो इशारा करेंगे तुम्हें, तुम्हारी अपनी चीज मिल जाएगी, कोई चीज कहीं बाहर से थोड़ा ले आना। फिर आप देखोगे कि मैंने पहले कहा आनंदादेव कलवी मानी जायते, सब आनंद से पैदा हुए। मिठाई से बना हुआ कुछ भी सब मीठा होता है, है? और वहीं जाके शुद्धि होगी। दूसरी बात यह है, साधन चतुष्टय संपन्न जो है वही जिज्ञासु होता है। साधन चतुष्टय संपन्न होना कोई साधारण बात नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। अपने से तुम साधन चतुष्टय संपन्न हो जाओ, विवेक वैराग्य, बड़ा मुश्किल है। कहां विवेक करोगे, किसका विवेक करोगे? अविवेक ने घेर रखा है, विवेक कहां करोगे? संग्रह ने घेर रखा है, त्याग कहां करोगे? अधर्म के पंजे में बैठे हुए धर्म की बात कहां सोचोगे? कोई तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हमारा आंख खुल जाए, जहां हमें प्रकाश मिल जाए, जहां बैठते ही हम अपने बारे में सोचने लगे, ईश्वर के बारे में सोचने लगे, धर्म की भावना हमारी बलवान हो जाए, हम सबके हित की बात सोचने लगे, सबकी प्रियता की बात सोचने लगे। ये जब आत्मा बलवान होगी तब आप करेंगे, आत्मा कमजोर होगी तो प्रशंसा भी नहीं करते, दूसरे की प्रशंसा सुन ही नहीं सकते। करना तो बस प्रशंसा करने की बात हो तो लगता है जीवा लकड़ा गई, माइयां बैठती तो चुगलियां करती रहती। बैठो, एक दूसरे की प्रशंसा करो, उसकी बड़ाई करो, नहीं तो बड़ाई सुनो मत बोलो। सब में अच्छाइयां होती हैं, अच्छाइयां कहो, तुम्हारा भी मन अच्छाइयों से भर जाएगा। अच्छाइयों का मतलब है मन का सात्विक होना, और जैसे ही मन सात्विक होता है तो उसमें आत्मा प्रतिबिंबित होता है, और आत्मा जब प्रतिबिंबित होता है तो उसके प्रकाश से हमारी इंद्रियां भी भर जाती हैं। फिर हमारी स्प्रिया नहीं होती है, फिर हमारी इच्छा नहीं होती है, फिर विषयों पर हम अपना जीवन आधारित नहीं रखते, हम तो स्वतंत्र होते। आत्मतृप्त से का स्प्रिया, अंदर से उसके अंदर कोई स्प्रिया नहीं रहती है, वो तो लबालब आनंद से भर जाता है, उसकी इंद्रियां भी भर जाती है, उसके संस्कार भर जाते हैं, वो तो केवल देना चाहता है, अंदर से नहीं, बाहर से नहीं, अंदर से देना चाहता है। वो तृप्त को देख करके पता चलता है ये तृप्त है, भिखारी को देख कर भी पता चलता है ये भिखारी है, तो अंदर से वो तृप्त हो जाता है। आत्मतृप्त से कासप्रिया, अपने आप को जान लेने के बाद एक तृप्ति होती है, एक अच्छी अनुभूति होती है, और उसके अंदर एक आकर्षण होने लग जाता है। किसी को भी पकड़ने के इरादा से अगर आप हाथ बढ़ाओ भाग जाएगा, और निश्चय से बैठे रहो तो तुम्हारे कंधे पर भी पंछी आगे बैठ जाएगा, उसको डर नहीं रहेगा। अभयम सत्य संशुद्धि। जब आप तृप्त होंगे तो सब अभय हो जाएंगे आपसे, देवी देवता भी आपके पास बैठ जाएंगे, उनको भी डर नहीं है। मंगता को देख कर सभी डरते हैं, मंगता को देख के सभी डरते, मंगता भी अमंगता हो जाता, मांगने वाला भी उसके पास पहुंच करके अपने को अरे इनसे क्या मांगना, डर ना। हमने पहले भी सुना, एक बार आज फिर सुनाते हैं हमको। देखो भारतीय संस्कृति, भाई हम कहीं जा रहे थे किसी के यहाँ साथ, दोपहर का भोजन था तो लाइट पर रुक गए, तो मांगते हैं ना खदरे तो दो दो चार चार की टोलियों में भाई मांगते रहते हैं बेचारे, वो भी आ गए और खड़ा हो गए, बाबा दे ना कुछ, इनको ना नहीं करना चाहिए महाराज, ये बड़े बहुत अच्छे होते हैं बड़े खराब भी होते हैं, अगर ये दिल से कुछ बुरा कह दें तो बुरा भी होगा और दिल से कह दें अच्छा तो अच्छा भी होगा, ये याद रखना। अपमान तो वैसे किसी का नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति का अपमान आप नहीं करते, उसके अंदर बैठा हुआ जो ईश्वर है उसका अपमान करते हैं आप न दो न दो, लेकिन अपमान तो मत करो। अरे उसने तो मांगने से पहले सब कुछ आपको दे दिया, मांगने का मतलब यह होता है कि उसने सब कुछ अपना दे दिया तुमको, अपमान का तो बड़ा भारी बड़ी भारी सजा है कि मांगने वाले का अपमान करें आप। आज जोलो नहीं बा, अच्छा बाबा ना, तो लड़के हमारे साथ रहते हैं दो तीन, एक से मैंने कहा रहे 50 रुपया दे दे, ये चार हैं 10-10 रुपया ले लेंगे, 5 हैं, बोलता नहीं नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए। हमने कहा अच्छा 100 रुपया दे दे, ये बहुत दिनों की बात है, कम से कम 15 साल पहले की बात है। हमने कहा अच्छा 100 रुपया दे दे, नहीं नहीं 100 रुपया भी नहीं चाहिए। अरे अपने लोग तो बाबा जी ठहरे ना, तो उसको मैंने कहा भाई चल 2 रुपया कोई देता नहीं, अब 100 रुपया दे रहे हैं तो बात करता, बोलता नहीं 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 मेरे को चाहिए जरूर बाबा, तेरे से चाहिए जरूर लेकिन पैसा नहीं चाहिए। अरे तो और क्या चाहिए, और कोई फल वल प्रसाद उसाद नहीं मेरे पास, बोला नहीं वो भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए। तो बोलता है कि हमको वो चाहिए कि गरीब के सिर पर हाथ रखता है तो वो धनी हो जाता है ना, वो दे दे मेरे को, चलो श्री राम। अब आप बताइए, वो 100 रुपया नहीं दे रहा था, बोला नहीं हमको मालूम है बाबा लोग किसी के सिर पर हाथ रखते हैं तो गरीब से धनी हो जाता है ना, वो मेरे को आशीर्वाद दे दे, पैसा नहीं, पैसा तो बहुत लोगों से ले लेते हम लोग। अब आप सोचिए जरा, उसको भी उस चीज की आवश्यकता है, उसको मालूम है, कहीं चले जाइए संत शरण है, वहां अपने आप ये जो कठोर साधनाएं बताई गई है एकदम बिल्कुल शरबत जैसी हो जाएंगे। आप मांगते हैं ना खदरे तो दो दो चार चार की टोलियों में भाई मांगते रहते हैं बेचारे, वो भी आ गए और खड़ा हो गए, बाबा दे ना कुछ, इनको ना नहीं करना चाहिए महाराज, ये बड़े बहुत अच्छे होते हैं बड़े खराब भी होते हैं, अगर ये दिल से कुछ बुरा कह दें तो बुरा भी होगा और दिल से कह दें अच्छा तो अच्छा भी होगा, ये याद रखना। अपमान तो वैसे किसी का नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति का अपमान आप नहीं करते, उसके अंदर बैठा हुआ जो ईश्वर है उसका अपमान करते हैं आप न दो न दो, लेकिन अपमान तो मत करो। अरे उसने तो मांगने से पहले सब कुछ आपको दे दिया, मांगने का मतलब यह होता है कि उसने सब कुछ अपना दे दिया तुमको, अपमान का तो बड़ा भारी बड़ी भारी सजा है कि मांगने वाले का अपमान करें आप। आज जोलो नहीं बा, अच्छा बाबा ना, तो लड़के हमारे साथ रहते हैं दो तीन, एक से मैंने कहा रहे 50 रुपया दे दे, ये 4 हैं 10-10 रुपया ले लेंगे, 5 हैं, बोलता नहीं नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए। हमने कहा अच्छा 100 रुपया दे दे, ये बहुत दिनों की बात है, कम से कम 15 साल पहले की बात है। हमने कहा अच्छा 100 रुपया दे दे, नहीं नहीं 100 रुपया भी नहीं चाहिए। अरे
अपने लोग तो बाबा जी ठहरे ना, तो उसको मैंने कहा भाई चल, दो रुपया कोई देता नहीं, अब 100 रुपया दे रहे हैं तो बात करता। बोलता नहीं 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 नहीं, मेरे को चाहिए जरूर बाबा, तेरे से चाहिए जरूर, लेकिन पैसा नहीं चाहिए। अरे तो और क्या चाहिए, और कोई फल वल प्रसाद उसाद नहीं मेरे पास? बोला नहीं वो भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? तो बोलता है कि हमको वो चाहिए कि गरीब के सिर पर हाथ रखता है तो वो धनी हो जाता है ना, वो दे दे मेरे को। चलो श्री राम, अब आप बताइए। वो 100 रुपया नहीं दे रहा था। बोला नहीं हमको मालूम है, बाबा लोग किसी के सिर पर हाथ रखते हैं तो गरीब से धनी हो जाता है ना, वो मेरे को आशीर्वाद देते, पैसा नहीं। पैसा तो बहुत लोगों से ले लेते हम लोग। अब आप सोचिए जरा, उसको भी उस चीज की आवश्यकता है, उसको मालूम है। कहीं चले जाइए संत शरण, वहां अपने आप ये जो कठोर साधनाएं बताई गई है एकदम बिल्कुल शरबत जैसी हो जाएंगे। आप स्वतः करेंगे तो बहुत कठोर है, बहुत कठिन है, है? और संत के पास बैठेंगे तो हाँ सम दंत दीक्षा ऊपर समाधान सब हो जाएगा। देखो बैठे हो नीचे कब से, 1 घंटे से, आपको लगता है कि सोफा सेट पर बैठना चाहिए? कथा सुन रहे हो, मन इधर ही है ना, समदम हो गया ना, तो दीक्षा भी आराम से कष्ट है, लेकिन पता चल रहा है कि कष्ट है। सनम सर्व दुखा नाम हो प्रतिकार पूर्वकम तो दीक्षा आई थी, बिना प्रतिकार के हम आराम से बैठे हुए, यही दीक्षा हो गई। वैराग्य भी है, घर से आए हो यहाँ, सुन रहे हो तो विवेक भी हो रहा, सुनने के साथ साथ विवेक हो रहा, एक ही साथ तुम जिज्ञासु बन जाते हो, आत्मलाभ प्राप्त करने के जिज्ञासु बन जाते हो, साधक बन जाते हो। कब? किसी संत के पास बैठ जाते हो तो, है ना। निराभिमानी भी बन जाते हो, वो अभिमान का निकलना बड़ा मुश्किल है, मेरा सब कुछ हो जाता, आदमी मर जाता छोड़ता ही नहीं, संत के पास अपने आप ही गल जाता है। इसलिए उपसेक नहीं करो, अभिमान मत करो। अच्छा अभिमान मत करो तो ऐसे नहीं करोगे हो जाएगा, हम कह देंगे तो कर दोगे? नहीं नहीं, उसका साधन होना चाहिए। निराभिमानी होने का जो आनंद है, जब ये भोगने लगोगे, कोई किसी को मिठाई खिला दो तो वो मिठाई याद रखता है। निराभिमानी होने का जो सुख है जब आने लगेगा आपके जीवन में, तो अपने आप अभिमान आपके जीवन से जाने लग जाएगा। अभिभव पर कथा, दूसरे की निंदा मत करो, उसकी जगह जप करो, इसलिए ये जरूरी है। फिर आनंद ही आनंद है, आनंद ब्रह्म विजारी याद, आपके स्वरूप में किसी प्रकार की कमी नहीं। और हमारे यहां आनंद बाद ही है, दुख बाद नहीं है, सुख बाद भी नहीं है, दुख बाद भी नहीं है। हमारे यहां का सिद्धांत आनंद बाद है। गृहस्थ आश्रम में रह के भी आत्मा के आनंद का सुख भोग सकते हैं आप। आनंद का भी भोग है, आनंद का भी भोग ज्ञान से भोगा जाता है, और आत्मा स्वयं में ज्ञान स्वरूप है। इसकी बोध के लिए यही एक सरल साधन बताया गया है, थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन किया करो, थोड़ा दान किया करो, थोड़ा जप किया करो, है ना। अध्ययन करने से हमेशा विवेक बना रहता है, अपने दोषों का पता चलता रहता है, दूसरे दोष बतलाएंगे तो कठिनाई होगी। दान करते रहो तो वैराग्य बना रहेगा, मोह वस्तुओं का कम होगा, दान से वस्तुओं का मोह कम होता है, उससे अंतःकरण पवित्र होता है। और जो गुरुदेव से मंत्र लिया है खूब जपा करो, उस जप से सारे दोष मिट जाते हैं। रोज होना चाहिए, एक दिन नहीं, जब तक जीवन है कब तक, कई दिन, ऐसा लोग कह देते हैं कितने दिन, कुछ फायदा नहीं। अरे फायदे के लिए सब कुछ होता है, प्रतिदिन ये होना चाहिए। इसमें संतोष नहीं करना चाहिए, संतोष हो नहीं वगैरह तब अध्ययन ही जब दान ही हो, अध्ययन में संतोष मत करो, दान करते समय संतोष मत करो। अरे जो दे दोगे वो तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगा। और खूब जप करते जाओ, जो गुरुदेव ने आपको दिया ये सरलतम साधन है जो है, उसको रोज भगवान का पूजन होना चाहिए, रोज पूजन भी होना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में रोज पूजन भी होना चाहिए, अतिथियों की सेवा भी होना चाहिए, संतों ब्राह्मणों की सेवा होनी चाहिए, माता पिता की सेवा होनी चाहिए,
जो अतिथि उसका आदर होना चाहिए, तब धन्य हो गृहस्थाश्रम। ये गृहस्थाश्रम भी धन्य हो जाएगा और आपको अपने स्वरूप का बोध भी बैठे बैठाए हो जाएगा। जब आप परिपक्व हो जाएंगे, निराभिमानी हो जाएंगे, सबका आदर करने लगेंगे, तो अपने आप गुरुदेव आपका चेहरा दिखा देंगे, ए बेटा तुम दशवस तमस यही तुम हो। इसलिए अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए, चित्त से शुद्ध ये कर्म, अच्छे कर्म जितने हो करते रहो, जो खराब है छोड़ दो टाल दो। चित्त एकाग्र उपासना, शीशा साफ हो गया हिलता हो तो भी चेहरा नहीं दिखलाई पड़ेगा, मन की चंचलता को दूर करने के लिए उपासना करना चाहिए आपको, आपके जो इष्ट देव हैं उनकी उपासना करना चाहिए, उससे स्थिरता होती है, उससे पवित्रता होती है, भगवान की कृपा का अनुभव होता है। मिल गया तो भगवान की कृपा है और नहीं मिला तो हरि इच्छा, नहीं मिला तो हरि इच्छा, तब भी संतोष हो जाता है, संशय मत करो। हाँ देखो, भगवान पार्वती को लेके जा रहे थे दंडकारण्य, कुंभज ऋषि के पास सत्संग सुने, जब लौटे तो दंडकारण्य से होके लौटे तो देखा तो भगवान जो है हे खग मृग हे बनकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग, बिलाप का नाटक चल रहा था भगवान भगवान का। भगवान शिव ने मन ही मन प्रणाम किया, पार्वती को संशय हो गया, अरे वाह, संशय किस में होता है, बुद्धि में है ना, बुद्धि में संशय होता है। उन्होंने पूछा आपने इनको नमस्कार किया, अरे बोले ये महाविष्णु है, बोले महाविष्णु है और घरवाली के लिए रो रहे, पेड़ों से पूछ रहे, लताओं से पूछ रहे, गुलमों से पूछ रहे, बंचरों से पूछ रहे, ये तो मानव रूप में ही है। अब क्या बहुत समझाया उन्होंने, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा, वहां भगवान शंकर ने कहा, बहुत समझाया। एक ने कहा महाराज ब्रह्मा की सृष्टि है, ये सृष्टि ब्रह्मा की है, तो आप तो ब्रह्मा से बड़े हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा ब्रह्मा की सृष्टि होती तो मैं इसको समझा लेता, लेकिन इस ब्रह्मा की सृष्टि से परे ईश्वर की भी इच्छा है, ईश्वर की, हाँ, कि मेरा ऐसा कहना भी इसके मन का संशय दूर नहीं कर सका। कहा उन्होंने कि ठीक है, अब तू नहीं मानते, जा परीक्षा ले। हाँ, ये किसकी इच्छा थी, अनिष्ट होता है तो उसको यही मान लेना चाहिए कि हरि इच्छा भावी बलवाना, तो भी संतोष होगा, तो भी तुम्हारा बल क्षीण नहीं होगा, तुम्हारे जीने का उत्साह बना रहेगा, फिर वो संकट वो संघर्ष तुमको हताश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हरि कृपा और हरि इच्छा दोनों रखना चाहिए। जब भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं हरि इच्छा भावी बलवाना, सृष्टि से परे का भी कोई काम होता तो यही मान के चलो कि भगवान की इच्छा है ना, तभी तुम्हारा मन मलिन नहीं होगा, तुम्हारा मन कमजोर नहीं होगा, क्योंकि भगवान का तब भी संबंध तुम्हारे से बना रहा। और गृहस्थाश्रम में तो आते ही रहते हैं भाई, गृहस्थाश्रम में तो ये सब तो होता ही रहता है, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुटता ही रहता है। अब अगर आपका मन कमजोर है तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए आनंद का प्रतिपादन करने के लिए साधन संपन्न होना चाहिए, उन साधनों को हम ठीक से कर सकें इसलिए ईश्वर की आराधना होनी चाहिए, ईश्वर का संबल होना चाहिए, संतों का संबल होना चाहिए, और जो नए बन गए हो ना उसको हटा दो, हटाते जाओ हटाते जाओ हटाते जाओ। मानव का मतलब है होता है मानव, जब तक बनते रहोगे तब तक दुखी रहोगे, और जब बनना बंद हो जाएगा तब, क्योंकि आत्मा में न कुछ बनता है न बिगड़ता है, तो आत्मा का जब सही स्वरूप पता चल जाए या सही स्वरूप जानने के लिए ये मानव शरीर मिला है, इसका सही सदुपयोग करना चाहिए। आप सभी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। और ये तो कथाएं बताएं तो आप लोग सुनते ही रहते हैं ना, हमको मालूम है ना, तो केवल आप लोग हमको सम्मान देने के लिए आते हैं, आप लोग तो हमसे भी ज्यादा कथककड़ हैं। फिर भी आपके इस दिए हुए सम्मान को हम धरोहर के रूप में रखेंगे, कहीं भी सत्संग हो सुनिए, संतों से कोई ना कोई अच्छी चीज मिलेगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो सत्य सनातन धर्म की सब ऋषियों की सब देवताओं की गौ ब्राह्मण की सर्व संतन की आज के आनंद की भक्त मंडली की स्वामी जी महाराज की ओम नमः पार्वती पदये हर हर।